ओम शांति।
हम सभी के लिए सबसे अधिक खुशी की बात कौन सी है? आप सभी देखें अपने को, कौन सी बात बहुत खुशी देती है? ठीक है, बोलो। हाँ, ये सब बातें तो रोज मुरलियों में आती रहती हैं, आप सबको याद रहती हैं, बहुत अच्छी तरह, ये अच्छी बात है। परंतु आप सभी ने एक विशेष बात अनुभव की है, नोट की है। बाबा इस धरती पर आए और बाबा ने आकर माताओं को क्या दिया है? कलश देने का अर्थ है सम्मान दिया है। भगवान जिन्हें सम्मान देता हो, उनकी खुशी और उनका नशा कहां तक पहुंच जाना चाहिए? भगवान सम्मान देता हो, आजकल के परिवारों में प्राय ये बात सुनने में आती है, जहां तहां दिखाई देती है कि बच्चे माँ बाप को सम्मान नहीं देते हैं, और इधर भगवान ने सम्मान दिया और सम्मान देकर क्या कहा? जैसे शास्त्रों में एक बात है, बाबा याद दिलाया करते हैं कि भगवान ने किसके पैर दबाए? द्रौपदी के पैर दबाए। पैर दबाने का अर्थ है आराम दिया, चैन दिया, ऐसी दृष्टि दी, ऐसे मधुर बोल बोले कि जन्म जन्म की थकान उतार दी। तो भगवान ने सम्मान दिया और सम्मान में एक टाइटल दे दिया आप सभी को, जो आप सभी का विशेष है, औरों के साथ जो नहीं लगता। क्या है वो? जगत माताएं। परंतु इस बात की जरा गहराई में आप चले, अपने से पूछें, क्या हमने सचमुच स्वयं को जगत माता स्वीकार कर लिया है? पूछो आप अपने से, जगत माता स्वीकार किया है या सुनकर ही खुश हो गए हैं? अब जब जगत माता बन गए, एक परिवार में भी एक माता आप हैं, तो आपको क्या क्या करना पड़ता है? और जब जगत माताएं बन गई, तो केवल जगत माता बनकर बैठना नहीं है, जगत माता के कर्तव्य भी पूरे करने हैं। और अगर जगत माता के स्वमान में स्थित हो जाए, अब आपको चिंतन करना है क्या क्या हो जाए। किसी के कपड़े आपको नहीं बना के देने, जैसे बच्चों को श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोजन भी नहीं खिलाना है, उनकी पालना के लिए कुछ इकट्ठा भी नहीं करना है, जगत माता बनना है। एक जगत माता थी सबसे पहली, कौन? मम्मा। और दूसरी दादी। और देखो दूसरी जगत माता दीदी, और सोचो ब्रह्मा बाबा, वो भी तो माँ बन के हमारे सामने आई ना। और तीसरी जगत माताएं, तीसरी जगत माताएं, तीसरी जगत माताएं इधर नहीं बोल रही, माताएं कहो हम, सेव शक्तियां क्यों कहती हो, कहो हम, ठीक है? तो जगत माताओं का कर्तव्य क्या है? एक है जगत को जगाना, जो जगत अंधकार में सो रहा है, जिसको राहों का पता नहीं, प्रकाश नहीं, जिसके आगे ज्योति नहीं है, उसको ज्योति दिखाना, मार्ग दिखाना, एक तो जगत माताओं का ये कर्तव्य है। दूसरा, दूसरा क्या काम है? जगत को बदलना, उसके लिए क्या करेंगे? ये नहीं जगत माता बन के बैठ गए और काम पूरा हो गया। क्या क्या करेंगे? खुद बदलेंगे और, हाँ वो तो जगाएंगे, आप जगा रहे हैं, और क्या? जगत माता बनकर जगत की पालना भी करनी पड़ेगी, और आप क्या करेंगी? वो करेगा बाबा, और जगत माताएं वो क्या करेंगी? जगत माताओं को भी पालना करनी है जगत की, तब तो जगत आपको माताएं मानेगा। अगर आपने उनकी पालना की ही नहीं, किसी मंदिर की देवी अगर भक्तों की इच्छाओं को पूरी करती न हो तो भगत जाएंगे उसके पास, कहेंगे ये देवी कामना नहीं पूरी करती, चलो दूसरी देवी के पास। तो जगत माताओं को जगत की पालना भी करनी पड़ेगी। कैसी कैसी पालना? अब वो पालना क्या है? और पालना के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है दो चीजों की। एक, पालना में त्याग करना पड़ेगा। त्याग के बिना पालना नहीं कर सकते। जगत की पालना करनी है तो स्वयं की बहुत सारी बातों का त्याग। और दूसरा, रहम से तो पालना होगी ही, दूसरी एक चीज, जब जगत की पालना करनी है तो अपने विचारों को हद से निकालकर बेहद में ले चलना है। अगर हद के विचार रहे, एक ही घर की पालना के संस्कार रहे, तो जगत माता के संस्कार नहीं बनेंगे। तो हद की भावनाओं को, हद के विचारों को, हद की दृष्टि को निकालकर बेहद में ले चलना है। जो दृष्टि आपको अपने लौकिक परिवार के लिए है, उस दृष्टि में क्या है? एक चीज, मेरा, ये मेरे हैं, इसलिए इनके लिए मुझे चाहे कुछ कष्ट भी हो, इसी मेरेपन को, एक और तो इसका त्याग करना होता है हमें, दूसरी ओर इसी मेरेपन को बेहद का कर दे। ये सारे संसार की मनुष्य आत्माएं भी हमारी हैं, ब्रह्मा की रचना तो जगत माताओं की भी रचना, तो उनकी पालना हमें करनी है। और उस पालना के लिए दूसरी सबसे बड़ी चीज होगी तपस्या। पालना क्या करेंगे हम उनकी? पालना में क्या देंगे संसार को? सुख देंगे। सारे बच्चे दुखी हो रहे हो तो माता को सहन नहीं हो सकता, इसका ये विशाल रूप हो जाए। सारे बच्चे अशांत हो, कमजोर हो, चिल्ला रहे हो तो माता का कर्तव्य हो गया उनकी पालना करना, परंतु इसके लिए अपना स्वरूप बहुत ऊंचा करना पड़ेगा। बाप समान ऊंची स्थिति पर खड़े हो जाए और सारे संसार को वो कुछ देने लगे जिसकी उनको जरूरत है। तो अगर एक इस नशे में स्थित हो जाए कि हम जगत माताएं हैं और जगत के उद्धार के लिए अवतरित हुए हैं, अवतार लिया है सबने जगत के उद्धार के लिए, जगत के आधार बनाया है बाबा ने, तो स्थिति स्वतः ही बहुत ऊंची हो जाएगी। और जिस एक बात की रोज चर्चा आप लोगों के साथ होती है, सब कहते हैं कौन सी बात, कि मोह को छोड़ना है, वो स्वतः ही छूट जाएगा। छोड़ना नहीं पड़ेगा, हम अपने ऊंचे स्वमान में रहें तो ये छोटी बातें जो जंजीरें बनकर बांध रही है आत्मा को, इससे मुक्त हो जाएंगे। ठीक है ये बात। अब आपके सामने हम एक संकल्प रख रहे हैं जिस पर आपको चिंतन करना है, यहां भी और बाद में भी, कि आपको सबसे पहले इस संसार को स्वर्ग बनाने से पहले अपने घर को मंदिर बनाना है। स्वर्ग बनने से पहले घर घर मंदिर बन जाए, उसके लिए क्या किया जाए? अब सोचो आप, मंदिर में किस किस चीज की जरूरत है और उस मंदिर की मूर्ति कौन होगी? मूर्ति तो इससे हटा दो, माताजी ने कहा मूर्ति तो हम होंगी, तो नहीं, मूर्ति हम है उसकी और घर है हमारा मंदिर। अब मूर्ति को कैसा होना चाहिए और उस मंदिर को कैसा रखना चाहिए? यहाँ आपको मूर्ति बनकर मंदिर को खुद निर्माण करना है। ये नहीं मंदिर कोई और बनाएंगे और आप उसमें जा बैठेंगी, जैसे आजकल होता है ना, मंदिर बना के मूर्ति की स्थापना होती है, लेकिन यहाँ चेतन मूर्ति को ही मूर्ति भी बनना है और मंदिर भी बनाना है। तो सबसे पहली धारणा, जिससे घर मंदिर बन जाए और घर में खुशहाली हो जाए, घर में किसी भी तरह की गम न रहे, लड़ाई झगड़ा न हो, जो भी वहां आए उसको वही आभास हो जो मंदिरों में जाकर होता है। दुखी लोग जाते हैं, शांत होके लौटते हैं, सोचते हैं मूर्ति के दर्शन हो जाएं तो सारे काम सफल हो जाएंगे। तो चेतन मूर्तियों के दर्शन से उनके काम सफल होने लगे। क्या करना है इसके लिए, समझ में आ गई ना बात? अब चिंतन करो गहराई से, यही नहीं रोज चिंतन करना। हम मूर्ति और हमारा घर मंदिर, आप ये नहीं कह सकेंगे कि हमारे घर में तो हम अकेले ज्ञान में चलते हैं, बाकी सब तो कोई सहयोगी है नहीं। मूर्ति तो एक ही होती है, कहीं कहीं सारे शहर में एक ही होती है, गांव में एक ही होती है, और वही मंदिर सबके आकर्षण का केंद्र होता है, सबका सहारा बना रहता है। तो क्या करेंगे? पहली धारणा पवित्रता। पवित्रता के साथ एक शब्द और जोड़ दो, संपूर्ण पवित्रता। पवित्रता अब नयों की चीज रह गई। आप सब जो बहुत पुराने समय से बाबा की छत्र छाया में पल रहे हैं, बहुत पुराने समय से है ना, अब संपूर्ण पवित्रता की ओर बढ़ना है। और संपूर्ण पवित्रता में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। उसमें ये भी एक बात है कि घर में छोटी छोटी बातों में मन चिड़चिड़ा न हो। अगर क्रोध आता है, अगर मन चिड़चिड़ा होता है, अगर स्थिति बिगड़ती रहती है छोटी छोटी बातों में, तो इसको भी पवित्रता की कमी कहा जाएगा। एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि एक चीज प्रैक्टिकल में देखी जाती है, बाबा के बच्चों के पास कम, बाहर बहुत ज्यादा, कि ज्यो ज्यो कोई मनुष्य बूढ़ा होता है वैसे वैसे उसका मन चिड़चिड़ा होता है। तो ज्ञान में चलने के बाद, योगी जीवन बनाने के बाद, जैसे जैसे आयु बढ़े वैसे वैसे स्थिति में चिड़चिड़ापन कम हो, क्योंकि आयु बढ़ने के साथ समझदारी बढ़े, विवेक बढ़े, ज्ञान बढ़े, छोटी छोटी बात स्थिति को परेशान न करे। ये एक बात आप सबके लिए बड़े महत्व की है, क्योंकि घर में सभी ज्ञान में नहीं चलते हैं, कोई कुछ करता है कोई कुछ, स्थिति में चिड़चिड़ापन ना आए। उसके लिए क्या सोच के रखना चाहिए, आता है चिड़चिड़ापन या नहीं? आता तो है, तो इसके साथ भी है, यानी कभी कभी आ जाता है, कभी आता है कभी नहीं। तो चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहे। कहां कहां चिड़चिड़ापन होता है देखो, जरा विचार करो, काम ज्यादा करना पड़ जाए, ठीक है, थक गए हो, कोई सहयोग न दे रहा हो, दूसरे सब बैठे हो और आपको काम करना पड़ रहा हो, तो शरीर कम थकता है लेकिन ये चिंतन ज्यादा थका देता है कि देखो सब बैठे हैं और मुझे काम करना पड़ रहा है। तो पहला थकान मनुष्य को मन से पैदा होती है। अगर हमारा मन न थके तो तन में भी बल रहेगा। बाबा की बात कई बार आपने सुनी होगी, अगर मन शक्तिशाली है, आत्मा की शक्ति के आधार पे तन को भी शक्तिशाली रखा जा सकता है। परंतु ये काम ना कि दूसरे तो सब काम फ्री बैठे हैं, उन्हें भी मदद करनी चाहिए, वो क्यों नहीं कर रहे, ये संकल्प ये कामना आत्मा को कमजोर बना देती है और जल्दी थकान होने लगती है। क्योंकि मन ही थक गया तो तन पहले ही थक जाएगा। तो इसके लिए क्या संकल्प रखना चाहिए, बिल्कुल थकान ना हो, दो चीजें केवल, एक तो काम करते समय हल्केपन से काम करने की आदत हो। बहुत बहुतों को ऐसा अभ्यास होता है कि काम होगा थोड़ा और भाग दौड़ ज्यादा, ये आदत थका देती है। और कईयों की आदत होती है बहुत काम लेकिन सहज भाव से पूरा कर लेते हैं। एक काम कर रहे किसी ने बीच में दूसरा बता दिया, चिड़चिड़ापन आ जाता है। और कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं, एक काम कर रहे चाहे उन्हें 10 बता दिए जाएं, वो धैर्यता से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा पूरे कर लेते हैं। तो मन में धैर्यता रहे, खुशी रहे काम करते हुए। और इसके लिए एक बात दूसरी याद रखें कि हमारे साथ कौन है, कौन है। और बाबा के साथ एक शब्द और जोड़ दें। हाँ, बाप दादा तो ठीक है, उसमें बाबा कहने से भी काम हो गया, कि बाबा 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है। अब 1000 भुजा वाली सबसे बड़ी शक्ति आपके साथ घर में काम कर रही हो तो आप में कितना बल हो जाएगा, बल आ जाएगा ना। ये कोई कल्पना नहीं है, ऐसा नहीं कि ऐसा सोचने से बाबा थोड़ा ही हमारा काम कर देगा, बाबा बर्तन थोड़ा ही मांज देगा, बाबा सब्जी थोड़ा ही काट देगा, ये कहेंगे। या अगर ये नशा चढ़ा रहे कि सहस्र भुजाओं के साथ बाबा खुद हमारे साथ हाजिर है, तो इससे सारे काम सहज हो जाएंगे। भक्ति में भी भक्तों को ऐसे अनुभव हुए, बहुत भक्तों को ऐसे अनुभव हुए कि भगवान ने आकर उनका काम कर दिया। सुनी होंगी आपने कहानियां। तो जब भक्तों को भावनाओं वश भगवान से ऐसे अनुभव हो सकते हैं कि काम भक्तों का और करे भगवान, तो क्या अपने प्यारे बच्चों के लिए वो ऐसा नहीं करेगा। बाबा की तो चुटकी बजते ही सारे काम हो सकते हैं। लेकिन बात है इस नशे की, इस विश्वास की और इस अभ्यास की। तो जब भी काम ज्यादा हो, ये संकल्प सदा के लिए अपने जीवन से निकाल देना चाहिए कि हम अकेले हैं। अकेले हैं ही नहीं, जब से बाबा के बने तब से 1000 भुजाओं सहित वो हमारे साथ है। इससे डर भी दूर हो जाएगा जीवन का और चिड़चिड़ापन भी खत्म हो जाएगा। तो चिड़चिड़ेपन से अपने को बचा कर रखना है, क्योंकि इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, अगर हम एक बार चिड़चिड़े हो गए, थोड़ा भी गुस्सा आ गया, भले ही मुख से कर नहीं रहे पर अंदर ही अंदर गुस्सा चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, सारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। चाहे आप सवेरे 2 बजे से उठ के योग लगा रहे थे लेकिन दिन में आ गया गुस्सा, तो वो जो योग लगाया उसकी खुशी, उसका नशा, शक्ति सब बह जाएगी। इसलिए घर मंदिर है, मंदिर में देवी गुस्सा करती ही नहीं, नहीं तो वो देवी नहीं है। ये संकल्प रखते हुए अपने स्वभाव को बहुत सरल बनाकर चलना है। तो एक सबसे महत्व की बात संपूर्ण पवित्रता में ये आ जाती है। और इस क्रोध और चिड़चिड़ेपन को जीतने के लिए आप एक शब्द और याद रखें जो पूरा ही मददगार होगा आपके लिए। गुस्सा क्यों आता है, जब कोई बात घटती है, किसी बात का होना और हमें गुस्सा आना, इसके बीच में हमारे मन में एक प्रश्न उठता है, क्यों। ठीक है ना, क्यों। हर जगह जहां भी गुस्सा आएगा उस गुस्से से पहले प्रश्न उठेगा, क्यों हुआ ऐसा, इसने क्यों ऐसा मुझे कहा, इसने ये नुकसान क्यों किया, इसने मेरे से ऐसा व्यवहार क्यों किया, मेरी बात क्यों नहीं मानी। ये जो क्यों है, इस क्यों को हटाना सीखना होगा। और क्यों को हटाने के लिए क्या दिया बाबा ने, केवल ड्रामा से काम नहीं चलता। क्यों को हटाने के लिए बाबा ने ज्ञान का भंडार दिया हुआ है। कहीं ज्ञान की किसी बात की आवश्यकता होगी, कहीं किसी बात की। तो आप चेक कर सकते हैं अपनी एक दिन की दिनचर्या में भी कि सवेरे से उठने से रात्रि तक मन में कितनी बार क्यों उठता है, दूसरों को देखकर भी कितनी बार उठता है, और आप देख सकते हैं, अनुभव करेंगे कि वो क्यों स्थिति को कैसे घुमाने लगता है। एक संकल्प के बाद अनेक संकल्प पैदा होने लगते हैं। इसलिए इस क्यों को अगर हटाने का अभ्यास होगा, साक्षी रहने का अभ्यास होगा, स्वयं में विश्वास रखकर चलते रहेंगे, दूसरों को न देखने की आदत होगी। ये दूसरों को देखने की आदत भी बड़ी खतरनाक है, तो ये क्यों समाप्त होगा और क्रोध से हम मुक्त होते जाएंगे। दूसरी बात, जब संपूर्ण पवित्रता की ओर हमें बढ़ना है, तो दूसरी इसकी निशानी बोलो, अब आगे की सोचो, दूसरी निशानी बोलो। ठीक है, संपूर्ण पवित्रता की दूसरी निशानी अपने पास एक चीज को और समाप्त करना, जो भी संपूर्ण पवित्रता का ही एक हिस्सा है और जिसको सरल शब्दों में कहा जाता है लोभ, लेकिन उसका विस्तार आसक्तियों से मुक्त। आत्मा जहां तहां आसक्तियों वश अटकी हुई है, छोटी छोटी बात में आसक्तियां, किस किस चीज में? बाबा ने बहुत समय से एक बड़ी गहरी बात पर ध्यान खिंचाया है कि तुम्हारी शक्तियां, मन की शक्ति, आत्मिक शक्तियां, योग की शक्ति कहीं देह की प्रवृत्ति में नष्ट न हो रही हो। देह के लिए हमें कपड़े चाहिए, भोजन चाहिए, रहने के लिए अच्छी सुविधाएं चाहिए। ये तीन चीजें, ये देह की प्रवृत्ति है मनुष्य की। अब इसके लिए तो कहीं हमारा अधिक समय नहीं गुजर रहा है दिनचर्या में। आप देखें, करना है हमें आत्मिक उत्थान, और कहीं हमारे 24 घंटे में से 20 घंटे शारीरिक प्रवृत्ति में ही व्यतीत हो रहे हो, तो उन्नति कैसे होगी? और इस प्रवृत्ति में भी विशेष रूप से कि हम आसक्त तो नहीं हो गए हैं। मान लो हमारे पास, हमें वस्त्र चाहिए, हैं? दादी भी आपको क्लास में सुना रही थी लोभ की बात। तो मनुष्य के अंदर लोभ इतनी गहराई तक पहुंच चुका है कि उसे कहीं भी संतुष्टि नहीं होती। अगर उसके पास 20 जोड़ी कपड़े हैं और दूसरे के पास एक अच्छा आजी आ गया, तो उसको फट से इच्छा होती है, मेरे पास भी होना चाहिए। ये इच्छा, या जिसके मूल में हम सब एक चीज प्रयोग करते हैं, आवश्यकता, ये हमारे लोभ को, हमारी आसक्तियों को बढ़ाती है। और हमें ये समझ लेना चाहिए कि अगर हमने अपने घर में अपने लिए बहुत सारा माल खजाना इकट्ठा कर लिया होगा, माल खजाना माने कपड़े, तो क्या होगा? हम उड़ नहीं सकेंगे। कपड़े भले ही पेटी में रखे हों, हमारे सिर पर उनका सूक्ष्म बोझ रहेगा, और आत्मा अपने को स्वतंत्र महसूस नहीं करेगी, क्योंकि ये संग्रह वृत्ति, संग्रह तो समझते हैं ना सभी, ये इकट्ठा करने की आदत योगियों की आदत नहीं है, ये योगियों का संस्कार नहीं है। बाबा क्या कहेगा कि प्यार होना चाहिए इनका मेरे से, और प्यार हो गया है पदार्थों से, तो अच्छा लगेगा? एक और हम रोज गीत गाएं कि बस मेरा तो एक, तुम ही मेरे, तुम मेरे प्रियतम हो। आज बाबा ने कहा कि आंखों से मोती आ जाएं प्यार में, विजय माला में जो पिरोए जाएं, और दूसरी ओर इतनी इतने बड़े आकर्षण को छोड़कर भगवान जैसा आकर्षण, जिससे सुंदर इस संसार में कुछ नहीं है, और हमारा आकर्षण वस्त्रों में और भोजन में चला गया हो, भोजन के पीछे हमारे संकल्प नष्ट हो रहे हो, आज ये खाऊं कल ये खाऊं, ये अच्छा नहीं लगता वो अच्छा लगता है, इसी उधेड़ बुन में अगर योगियों का जीवन बीतता होगा, तो वो कभी जगत माता नहीं बन सकेंगी, उनसे जगत की पालना नहीं हो सकेगी। और हम समझ ही सकते हैं कि बाबा की दृष्टि भी ऐसी आत्माओं से हटती चली जाएगी। वो कहेगा मैं इतनी इनकी पालना कर रहा हूँ और ये मेरी इस पालना को भूलकर किधर भटक रहे हैं। तो ये आसक्तियां पदार्थों में, प्रवृत्ति में, देह की प्रवृत्ति में शक्तियों का नष्ट होना, इससे भी स्वयं को मुक्त करना है, देवियां बनना है। देवियां कभी किसी से कुछ मांगती नहीं, देवियों के पास रोज चढ़ावा चढ़ता है और पालना किसकी होती है? पुजारियों की। देवियों की तो एक दो ड्रेस होगी, वो बदल देते हैं, बाकी सारी पालना पुजारियों की होती है। तो योगियों का संस्कार होना चाहिए कि योगियों के पास अपने लिए नहीं, सब कुछ जगत की पालना के लिए है। यह है बहुत ऊंची भावना, जगत माताओं का संस्कार। इस तरह कहीं भी आसक्ति न रह जाए। आप में से भी कई माताएं कहती हैं कि हमारे घर में हमारा विरोध होता है, हम चल तो रहे हैं 20 साल से, अभी तक भी संघर्ष है, बच्चे भी हमें सम्मान नहीं देते, संबंधियों के पास जाते हैं हम भोजन नहीं करते तो नाराज होते हैं। प्रैक्टिकल बातें हैं ना, ये सब क्यों है? हम पक्के हैं, ये तो बात ठीक है, परंतु हमें अपने स्वरूप को देवी स्वरूप बना लेना चाहिए। देवियों से कोई नाराज नहीं हो सकते, देवियों को कोई फोर्स नहीं कर सकते कि तुम हमारे घर का खाओ, बल्कि वो ये समझेंगे कि इनको खिलाना पाप होगा। अगर कोई हमारी अच्छी धारणाओं से नाराज है, उसमें हमारी गलती है कि हम अपने ऊंचे नशे में स्थित नहीं है, हम अपने ऊंचे स्वमान में स्थित नहीं है, हम केवल ज्ञान सुना रहे हैं कि हमें बाहर नहीं खाना है, पर क्यों नहीं खाना है ये हम उन्हें महसूस नहीं करा रहे। अगर उन्हें महसूस हो जाए कि ये तो देवियां हैं, तो वो कभी कोशिश भी नहीं करेंगे, कहने का भी साहस नहीं करेंगे कि हमारे घर का खाओ। और इतना सम्मान हो जाएगा, परिवार में कोई भी विरोध करने का साहस नहीं कर पाएगा। वो महिमा करेंगे कि अगर आपको शांति चाहिए तो इनके पास जाओ। ऐसी कई माताएं हैं, ऐसे कई बाबा के बच्चे हैं जो अपने इस अच्छे स्वरूप में स्थित होने के कारण इस रूप से प्रसिद्ध हो रहे हैं और होते जाएंगे कि अगर किसी को दुख है, परेशानी है, बेचैनी है, तो इनके पास जाओ, इनके द्वारा तुम्हें ठीक ठीक ज्योति मिलेगी। तो हम अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहें, हम अपने को महान समझें, तो संसार हमें महान समझेगा। हम कामना करते हैं कि संसार में हमारी प्रत्यक्षता हो जाए, परंतु क्या हमारे अपने अंदर हमारी प्रत्यक्षता है? संसार हमें महान स्वीकार करे, परंतु क्या हमने स्वयं को महान स्वीकार किया है? अगर महान स्वीकार किया हो तो हमारे बोल, संकल्प, व्यवहार, संस्कार, दृष्टि, वृत्ति सब महान हो जाए, हद से निकल जाए, बेहद में चली जाए, कल्याणकारी हो जाए, हमारे मुख से कभी कोई गलत शब्द नहीं निकल सकता। तो संपूर्ण प्योरिटी की ये एक पहचान होगी कि हमारा आकर्षण सिवाय एक के कहीं ना हो, और उस आकर्षण में ये सब बातें आ गई। वो आकर्षण केवल देह का नहीं, वो पदार्थों का भी ना हो, इस संसार से कुछ पाने की कामना भी हमें ना हो, इस संसार में हमें कोई पूछे ये भी कामना ना हो। भगवान जिनको पूछ रहा हो, भगवान ने जिनको आकर मान दे दिया हो, आज क्या कहा, कंधों पर चढ़ाया हो, तो वो ये कैसे कामना रख सकते हैं कि संसार भी हमें पूछता हो, पूछे। तो ये संकल्प एक तरह से जैसे बाबा की क्या हो गई, इंसल्ट हो गई, कि उसके प्यार को, उसके स्वमान को छोड़कर हम संसार से कुछ पाने की कामना करते हो। जब हम भगवान को ढूंढते थे तो क्या कहते थे, सब कुछ छोड़ दें, तुम मिल जाओ, बस एक बार तुम मिल जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए संसार का। और जब वो मिल गया फिर कहते हो कि अब ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो ये हमारी गलती कहलाएगी। आगे चलें, अब अपने घर को हमें मंदिर बनाना है। एक स्वभाव आप अपना बना लें कि घर में, घर के वातावरण में सदा सदा ही खुशहाली छाई रहे, मौज का वातावरण हो घर में, आनंद का वातावरण हो। और वो तब होगा कि अगर कोई भी बात घर के वातावरण को भारी कर रही हो, घटनाएं तो होती रहती हैं, कोई नुकसान हो गया हो, कोई ऐसी अनहोनी घटना घट गई हो, किसी ने कोई लड़ाई झगड़ा कर दिया हो, तो आप अपने बोल से, अपने संकल्प के वाइब्रेशन से उस बात को जल्दी हल्का करने का अभ्यास करें, उसमें बह न जाएं। और बाबा ने ये एक नियम, ये सिद्धांत बताया है कि अगर हम स्वयं ऊंची स्थिति में स्थित हो जाएंगे, ऊंची स्थिति में स्थित होके जैसे संकल्प करेंगे वैसा ही घर का वातावरण बन जाएगा। अब ऐसे ही अनुभवों की आवश्यकता है। आपके घर में अशांति हो गई किसी बात से, आप स्थित हो जाओ, मैं आत्मा शांत स्वरूप। तो इस तरह अपने घर में खुशहाली का वातावरण बनाना ये अपनी जिम्मेदारी है। और जिस घर में खुशहाली हो उसमें सुख और संपत्ति सहज रूप से आ जाती है। तो जिस घर में एक भी चेतन देवी है उस घर में खुशहाली न हो, उस घर में कष्ट हो, ऐसा नहीं हो सकता। जबकि देवियों के दर्शन से भी मन खुश हो जाता है, तो जहां चेतन देवियों का निवास हो वहां सब प्रसन्न रहेंगे, सब भरपूर रहेंगे। और आगे चलें, अपने घर को मंदिर बनाने के लिए और किस चीज की जरूरत है? अब संपूर्ण पवित्रता पर तो आप स्वयं चिंतन करें। आने वाला समय हम सभी के लिए अनेक तरह के पेपर लाएगा, जीवन में चुनौती लाएगा, हमारी परीक्षाएं होंगी। उस परीक्षाओं में पास होने के लिए सबसे पहली आवश्यकता होगी पवित्रता का और योग का बल हमारे पास हो। सहन तो हमें तब करना पड़े जब वो चीजें हमारे पास तक आ जाएं, लेकिन अगर पवित्रता और योग का बल होगा तो दूर से ही सारे विघ्न नष्ट हो जाएंगे, हमारा स्वरूप रहेगा विघ्न विनाशक। तो इस तरह संपूर्ण पवित्रता पर विशेष ध्यान देते हुए अब और आगे चले, घर को मंदिर बनाना है और क्या चाहिए? अपने को गुणों से सजाना है। देवियां गुण संपन्न हो, शक्ति संपन्न हो। और गुणों में देवियों के चेहरों पर कौन से गुण दिखाए गए विशेष? हर्षित, कोई भी बात हमारी खुशी को नष्ट न करती हो, और रहम दिल, धैर्यता, गंभीरता, संतुष्टता। भगवान को मिलने के बाद आत्मा पूरी तरह संतुष्ट हो गई हो, ऐसा न हो कि इतनी बड़ी प्राप्ति इतने दिनों की इंतजार के बाद हुई और उसके बाद भी जीवन में असंतुष्टता रह गई। और ये संतुष्टता कैसे आएगी? संतुष्टता कैसे आएगी? ठीक बोल रहे, बोलो कैसे आएगी? ईश्वरीय अनुभवों से, ईश्वरीय प्राप्तियों के द्वारा। भगवान से सब कुछ मिलने लगे तब ही आत्मा संतुष्ट होगी। सांसारिक प्राप्तियों से कभी आत्मा संतुष्ट नहीं होती। कोई देखा दुनिया में आपने संतुष्ट होता हुआ व्यक्ति? उसके पास महल हो या करोड़ों की संपत्ति हो फिर भी बेचैन, उतने ही ज्यादा बेचैन। आत्मा क्योंकि अलौकिक चीज है, वो संतुष्ट भी अलौकिक प्राप्तियों से ही होगी। तो देवियों को सभी गुणों से सजे सजाए रहना है। और उसमें भी देवियों के हाथ में हमेशा एक चीज दिखाते हैं, कमल तो है ही, और एक चीज त्रिशूल, और एक चीज आप और नहीं बोले जो सबसे पावरफुल है, वो है स्वदर्शन चक्र। हर देवी के हाथ में है, आप देख सकते हैं श्री कृष्ण के हाथ में स्वदर्शन चक्र, राम के हाथ में नहीं। देखा आपने कहीं राम के हाथ में चक्र? राम के हाथ में कहीं चक्र नहीं, उसके हाथ में तीर कमान, और सभी देवियों के हाथ में भी चक्र। चक्र भी देवियों के हाथ में है, अंतर देखें आप। राम के हाथ में चक्र नहीं, देवियों के और श्री कृष्ण के हाथ में चक्र है। तो इसका अर्थ स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएं। अगर नहीं बनेंगे तो क्या, कहां पहुंच जाएंगे? राम के पास। तो अगर सबसे ऊंची डायनेस्टी में, सबसे ऊंची राजाई में चलना है, श्री कृष्ण की राजाई में, तो ये अपना श्रृंगार सदा अपने हाथ में रहे। कोई भी चीज को नष्ट कर सकता है सुदर्शन चक्र। देवियों के लिए भी दिखाया और श्री कृष्ण के लिए भी, कि स्वदर्शन चक्र छोड़कर फौरन असुरों का संहार कर देते थे, देर नहीं लगती थी। और जहां बाणों से युद्ध होता था, वहां उसके भी बाण लगते थे, इनके भी बाण लगते थे। स्वदर्शन चक्र को कोई रोक नहीं सकता। स्वदर्शन चक्र में वो शक्ति दिखाई है कि जब वो छूट गया, कोई बाण, कोई और शक्ति उसको रोकने में समर्थ नहीं थी। तो ऐसा स्वदर्शन चक्र किसके पास है? हमारे पास है। तो इसको सदा अपनी उंगली में ही रखना है, नीचे नहीं रख देना। नीचे रख देते हैं इधर उधर हो जाता है, हलचल में आ जाते हैं। तो इसको उंगली में ही रखना है, अर्थात बुद्धि में ये स्वदर्शन चक्र घूमता ही रहे। तो इसका बल आत्मा को सदा ही माया के छोटे छोटे रूप, असुरों के छोटे छोटे वार, उनसे मुक्त रखेगा। तो स्वदर्शन चक्र को दो शब्दों में स्पष्ट कर ले, स्वदर्शन चक्र अर्थात इस सृष्टि चक्र में हमारा जितना ऊंचा पार्ट रहा है, उसकी स्मृति और उसका नशा। स्मृति और नशा हमें याद भी रहे, हमारा सृष्टि चक्र में कितना ऊंचा ऊंचा पार्ट है, क्या क्या किया है हमने, और उसका नशा भी रहे, तो कोई भी सूक्ष्म और मोटी माया, असुरों का वार हमारे ऊपर नहीं हो सकता। हमें ये बात अपने पास नोट रखनी चाहिए। अगर हम ऐसे अच्छे नशे में रहेंगे तो हमारा नशा दो काम करेगा, जो बहुत जरूरी होगा आगे आगे चलकर। एक, हमारी और दूसरों की रक्षा, सुरक्षा। विनाश होगा, प्राकृतिक प्रकोप होंगे, चारों ओर गोलियां चलें, लेकिन जहां ऐसी नशे में, स्मृति में रहने वाली आत्मा होगी, वहां के आसपास जितने और भी लोग होंगे, सब सुरक्षित हो जाएंगे। एक सबसे बड़ा लाभ होगा ये। और दूसरा, हमारा ये नशा अनेक आत्माओं का सहारा बनेगा, हमारी स्थिति को भी ऊंचा रखेगा, हमें निर्भय भी रखेगा, और अनेक आत्माओं का सहारा भी बनेगा। इससे हमारा भय दूर होता जाएगा। विनाश के समय भय होगा संसार में, अविनाश आप देख रहे हैं, देखा ना अभी विनाश, कितना अविनाश जहां तहां छा गया, और उससे सभी मनुष्यों के अंदर भय पैदा हो गया कि घर से बाहर कैसे निकलें, डर। और जहां स्वमान में स्थित देवियां चलेंगी, तो उनकी और दूसरों की स्वतः ही सुरक्षा होगी, प्रकृति भी उनकी सुरक्षा करेगी, सारा संसार, प्रकृति उनको सम्मान देगा। तो ऐसी श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ नशा, चक्र में हमारा कितना ऊंचा पाट रहा है, इसकी स्मृति और नशा, यह है स्वदर्शन चक्र। और इससे, ये बड़ा श्रृंगार है, इससे हम सदा ही संपन्न होते रहेंगे। और क्या चाहिए मूर्ति बनने के लिए? और क्या चाहिए बोलो? दैवी गुण भी लाने हैं सारे, धैर्यता दैवी गुणों में, वरदानी मूर्त बने। ठीक बोला माताजी ने, केवल वरदान मांगते न रहें। जो भक्ति में वरदान प्राप्त कर रहे हैं भगत, वो किससे कर रहे हैं? वो तो हम सबसे कर रहे हैं, और हम वरदान मांग रहे हों तो कैसा लगेगा? हम वरदाता हैं, वरदानी, मास्टर वरदाता। भगवान से सबको वरदान मिलता है, तो उसने वही शक्तियां अपने बच्चों को भी दी हैं। तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा अपने जीवन में कि हमारे संकल्प और हमारे बोल वरदानी हो, श्रापित करने वाले नहीं। भूल से भी हम किसी को गलत शब्द अगर बोलते हैं और वो सत्य हो जाए तो क्या होगा? उसका बोझ सारा हमारे ऊपर आ जाएगा। आपने सुना होगा विश्वामित्र क्रोधित हुआ, श्राप दिया, 12 साल की तपस्या नष्ट। फिर पछताता रहा कि मुझे गुस्सा आ गया, माया आ गई, मेरी 12 साल की सारी मेहनत तपस्या समाप्त हो गई। तो अगर हम अपने मन से भी श्रापित संकल्प पैदा करते हैं, इसका बुरा हो जाए, इसने हमें दुख दिया था, ये नष्ट हो जाए, ऐसे सोच लेते हैं ना मन में? ऐसा तो नहीं सोचते ना? कभी कभी किसी से पूछा जाए, किसी के पास एक प्रश्न हुआ कि अगर भगवान से तुम्हें ये शक्ति मिल जाए कि जो तुम संकल्प करोगे वही हो जाएगा, तो तुम पहले पहले क्या करोगे? अगर आपको ये बात कही जाए कि आपको बाबा से ऐसी शक्ति मिल जाए कि जो सोचो वही होगा, तो पहले पहले क्या करेंगे? हाँ, आप सबकी तो बड़ी शुभ भावनाएं हैं। तो वो तांत्रिक था, उसने उत्तर दिया कि सबसे पहले जिसने जिसने मुझे तंग किया उन सबको नष्ट करूंगा। तो क्योंकि मनुष्य के अंदर दूषित भावनाएं ज्यादा प्रबल हैं, आजकल बुरी भावनाओं के लिए वो सोचते हैं कि इसका प्रयोग भी इसी तरह किया जाए। तो भूल से भी हमारे मन से भी ऐसे संकल्प न उठ रहे हों। बाबा ने हमें ये पहचान दी है, तुम पवित्र आत्माएं हो, तुम वही देवी देवता हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। तुम्हारे मुख से निकला हुआ बोल, तुम्हारे मन से निकला हुआ संकल्प सत्य होगा। वो इसलिए हम अपने बोल और संकल्प से अपना और दूसरों का कल्याण करते चलें। अगर हम जरा भी उल्टे संकल्प चलाएंगे तो सबसे पहले उसका प्रभाव हम पर ही आएगा। दूसरे के बारे में कुछ भी बुरा सोचना, वो सबसे पहले सोचने वाले पर प्रभाव डालता है। तो हमें अपना स्वरूप बनाना है वरदानी, देवियां वरदानी हों। और कभी भूल से बच्चों को भी ये नहीं कहना है, बाबा ने बहुत छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान खिंचाया है, अपने परिवारों में ये भी नहीं कहना है कि ये तो है ही ऐसे। ये तो कहा जाता है ना भूल से, ये भी नहीं बोलना चाहिए। नहीं, समझाना अलग चीज है, परंतु कभी कभी दूसरों से तंग होकर हमारे मुख से ये बोलना निकल जाए कि ये तो ऐसे ही है, सुधरेंगे ही नहीं। तो अगर हमने कह दिया कि ये सुधरने वाले नहीं है, कभी कभी गुस्से में ऐसा कह दिया जाए, जब कोई नहीं सुधरता 10-20 बार समझाने से कि भाई भगवान भी आ जाए तो भी ये सुधरने वाले नहीं है, तो ये जैसे हम उनके ऊपर छाप लगा देते हैं कि तुम नहीं सुधरोगे, तो ये हमारी गलती हो जाएगी। घर में भूल से ये भी नहीं कहना चाहिए किसी बच्चे को कि ये बच्चा तो बुद्धू है, क्योंकि बच्चे जिनकी ग्रहण शक्ति बहुत तेज होती है, आप उनको रोज 4 बार कहने लगो परिवार के सब लोग, ये तो बुद्धू है, बुद्धू रहेगा, तो वो बेचारा समझ लेगा कि भाई मैं तो बुद्धू हूँ, और वो बुद्धू ही रह जाएगा, उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो हमारे बोल और संकल्प दूसरों को उत्साह दिलाने वाले हों, वरदानी हों। और देवियों के पास क्या होना चाहिए बोलो? देवियों को अपना तो पता हो ना, क्या क्या हो हमारे पास, और क्या क्या हो देवियों के पास? तो हमारा चित्त शुभ भावनाओं से भरा हो, हमारे भंडार शुभ भावनाओं से भरे हो, हमारी शुभ भावनाएं दूसरों को सहज प्राप्तियों का अनुभव कराती रहेंगी। बाबा ने पीछे बोला कि मनसा सेवा का सहज और स्वाभाविक रूप है शुभ भावनाएं। शुभ भावनाएं उठती रहें उनके लिए भी जो हमारा विरोध करते हों, ये हमारी मानता होगी, यही हमारा बेहद का दृष्टिकोण होगा, जगत माता का स्वरूप होगा कि जो लोग बुरे हैं उनके लिए भी हमारे मन से शुभ भावनाओं के वाइब्रेशन फैलते रहें। और हमारी शुभ भावनाएं कब काम करेंगी, कब काम करेंगी? दो चीजें चाहिए शुभ भावनाओं में। एक, शुभ भावनाएं मोहवश न हो, कभी कभी शुभ भावनाएं मोहवश भी होती हैं। दूसरी, शुभ भावनाओं में योग का बल भरा हो। बल हमारी भावनाओं में नहीं होगा तो हमारी भावनाएं दूर तक नहीं पहुंच पाएंगी। इस तरह शुभ भावनाओं का भंडार इतना भरा हो कि जो जिस कामना से आए स्वतः ही उसकी पूरी होती रहे। शुभ भावनाओं में इतना बल है कि हमारी शुभ भावनाएं दूसरों की अनेक तरह की इच्छा को स्वतः ही पूरा कर देते हैं। और क्या चाहिए देवियों में? नैनों में रहम की भावना, बोल में शक्ति भी हो, एक एक बोल दूसरों का कल्याण करता चले। और क्या नहीं होना चाहिए? भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार में जब विनाश का खेल होगा तो भय अगर जरा भी हुआ, जैसे कईयों के लिए है ना कि भाई ऑपरेशन भी नहीं देख सकते, किसी को हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर रहे हो, थोड़ा काट दिया हो, जरा सा भी खून बह गया हो तो देखा नहीं जाता, ये कमजोर दिल नहीं होना चाहिए। अपने दिल को बाबा जैसा शक्तिशाली, शेर पर सवारी, देखो माता जी को याद है, ऐसा मजबूत होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? और कुछ आदतें जो हमारे देवी स्वरूप के विपरीत हैं, उसको हमें छोड़ देना चाहिए। अब ये रोने की बात तो आप सुनते ही आते हैं, हम कुछ और सुनाएं। एक, दूसरों को देखने की आदत न हो, जीवन का बहुत बड़ा मंत्र है ये भी। दूसरों को देखते ही परचिंतन प्रारंभ हो जाता है और हमारी शक्तियां नष्ट होने लगती हैं। दूसरों को देखने की आदत बड़ी खराब है, ऐसी माया है जिसका पता ही नहीं चलता कि ये भी कोई माया है क्या। जब भगवान को बुलाया कि तुम आओ, तो इसलिए तो नहीं बुलाया था ना कि तुम आ जाओगे तो भी हम दूसरों को ही देखते रहेंगे, थोड़ा तुम्हें देखेंगे थोड़ा दूसरों को देखेंगे, ऐसा तो संकल्प ही नहीं था। बस केवल तुम ही तुम होगे, तुम्हारे ही साथ रहेंगे, जो तुम कहोगे वही मानेंगे। तो अब ये आप चेक कर लें कि कहीं दूसरों को देखकर तो हम अपने को नहीं चला रहे हैं, या हमारा श्रेष्ठ लक्ष्य हमारे स्वयं के सामने है। और क्या संस्कार नहीं होना चाहिए जो आप सुन भी रहे हैं? और संस्कार नहीं होना चाहिए कि ज्यादा वर्णन करने की आदत न हो। अब समय है जब मौन की शक्ति, साइलेंस की शक्ति हम अपने में भरते चलें। अगर ज्यादा बोलने की आदत है तो नुकसान तो होता ही है, आप जानते ही हैं। तो अपने जीवन के ऐसे नियम आप बना लें कि कम से कम सवेरे के समय जल्दी उठ के और 8 बजे तक मौन रहें, चाहे आपके घर वालों को सबको पता हो कि अब 4 घंटे इनका मौन है। ऐसे ही दिन में एक समय और निश्चित कर लें आप, अपने घर के कामकाज के अनुसार आप स्वयं देख लें, शाम को या बीच में कम से कम 2 घंटे का मौन और निश्चित करें। तो इससे आपके अंदर शक्तियां बढ़ती जाएंगी। जैसे आप सभी माताएं एक बात का अनुभव रखती हैं कि जब जब घर में आपने व्रत रखा होगा, एक दिन का व्रत, तो कैसा वायुमंडल होता था घर में, होता था ना बड़ा आकर्षक, सबको पता होता था आज इनका व्रत है, कैसी स्वच्छता निर्मलता अनुभव होती थी घरों में। तो ये बात अब इसी रूप से, व्रत के रूप से अपने जीवन में अपनाएं। 2-2 घंटे 4-4 घंटे चुप रहने का अभ्यास करें। चुप रहने की भी एक तपस्या है, चुप हर एक व्यक्ति नहीं रह सकता, या रह सकते हैं? बोलने की इच्छा होती है, मन खाली लगने लगता है। कोई कहेगा क्या गुंगे हो गए ये, तो इनसे बोला ही नहीं जाता, क्या हो गया इन्हें। लेकिन हाँ, पहले मुख से चुप रहेंगे, फिर मन से अभ्यास करेंगे जो जो बाबा ने बताए हैं, तो मन का मौन भी बढ़ेगा और मन का सुख भी बढ़ेगा। केवल चुप रहना हमारा लक्ष्य न हो, चुप रह के हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों चुप हैं, जबरदस्ती नहीं। जैसे बाबा ने अभी कहा था ना कि कईयों को चुप रहना ऐसा लगता है जैसे कर्फ्यू लगा दिया हो कि घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो बोल नहीं सकते, एक दिन का मौन रख दिया तो बड़ा भारी लगता है दिन बिताना, कईयों को तो ऐसा होता है, और कईयों को बहुत आनंद आ जाता है। तो चुप हम क्यों हैं, चुप रह के हम कर क्या रहे हैं, देखना ये है। चुप रह के हम कुछ अच्छा चिंतन कर रहे हैं, कुछ बाबा से बातें कर रहे हैं, बाबा से शक्तियां ग्रहण कर रहे हैं, ये अगर हम कर रहे हैं तो चुप रहना हमारा सफल है। नहीं तो ऐसे तो चुप दुनिया में बहुत लोग रहते हैं, उनको कोई विशेष लाभ नहीं होता। तो चर्चाएं न हो, और जो भी माताएं पढ़ना जानती हैं, बहुत शौक आप सबको है ही, पढ़ने का है तो देखने में आता है, तो मुरलियां पढ़ने का रोज एक नियम बना लिया जाए, क्योंकि आजकल घरों में टीवी के कारण वातावरण कुछ और तरह का होता जाता है। ये जिसको नहीं है वो तो अच्छी बात है, क्योंकि ये रावण का अंतिम तीर है, उसने ऐसा गुप्त बाण फेंक दिया है घर घर में कि अब लो मैं देखता हूँ तुम कहाँ बच के जाते हो। घर में आवाज है, देर तक सब जग रहे हैं, और कभी आपको देखना भी पड़ जाता है, घर में ही रखी जहां आप रहते हैं। तो इस सब से बचने के लिए जो अच्छी चीज होती है उसका तो बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, पर अगर कोई बुरी चीज है, आवाज भी बुरी है, बहुत तेज आवाज हो रही हो, उसका मनुष्य के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है, देर तक जग रहे हो उसका भी बुरा असर पड़ता है। तो उससे बचने के लिए सोने से पहले आप मुरली का अध्ययन करो, चाहे वो साकार मुरली हो चाहे अव्यक्त मुरली हो, जो भी आपको प्रिय लगे या बल दे, और उससे कम से कम दो बातें रोज अपने पास नोट करो, पढ़ के छोड़ ना दो। दो बातें जो बहुत अच्छी लगी आपको वो अपनी डायरी में अलग से लिख लो, और सवेरे उठते ही उन दो बातों को जरूर याद करो, क्योंकि अगर सवेरे उठ के ज्ञान चिंतन अच्छे विचार मन में नहीं उठते तो योग में नींद आ जाती है। और आप सभी क्योंकि अपने घर घर में योग करते हैं, सेंटर पे तो सवेरे नहीं जा पाएंगे, तो घर में आप अकेले बैठेंगे, सब लोग सोए हुए हैं, वायुमंडल भी नींद का है, उस टाइम आप ऐसे ही शांत में बैठेंगे तो जरूर नींद आ जाएगी। इसलिए वो दो पॉइंट जो आपने पढ़े हैं उनको सवेरे उठते ही याद करो, बाबा से रूहान करो, नशे में चलो फिर योग करो। ये नहीं कि बैठते ही उठते ही चलो अब ऐसा रीरी हो जाए बिंदु रूप, उसे जल्दी नहीं तो ऐसा रीरी हो जाते हैं फिर। तो अच्छा चिंतन आत्मा को और शरीर को दोनों को चुस्त रखेगा। ये आपको विशेष अपने घरों में एक अभ्यास डाल लेना है। और कौन सा स्वभाव नहीं होना चाहिए देवियों में, ठीक है, ईर्षा द्वेष और जिद, ये देवियों की शोभा नहीं है, और क्या, रूसना भी नहीं। पर चिंतन के साथ एक शब्द और प्रयोग किया जाता है, परपंच, सुना है ना आपने, परपंच। किसी किसी को बहुत सारे परपंच में उलझे रहने की आदत होती है, इस परपंच को अब समेट कर चलना है। परपंच से हमें अब कुछ मिलने वाला नहीं है, इधर की बात उधर की बात इसकी उसकी, अब हम सब इससे मुक्त हो गए। तो अब अपने इस स्वरूप को, चाहे वो संपूर्ण पवित्रता का हो या अपने दैवी स्वरूप को, चेतन दैवी स्वरूप को इमर्ज करने का हो, अपने पास इस भट्टी से कम एक ऊंची स्मृति ले जाए जो जीवन में ऐसी समा जाए जैसे इस जीवन में आपको ये बात कितनी नेचुरल हो गई है कि हम नारी हैं, कितनी नेचुरल है, सोचना नहीं पड़ता। ऐसे ही वो एक ऊंची स्मृति कौन सी है कि हम अवतार हैं, हम अवतार हैं, मनुष्य नहीं, नारी नहीं, अवतार। इस देह में भी अवतार, पवित्रता के अवतार, शांति के अवतार, शक्तियों के अवतार। इस बात को इतना अपना बना दो कि हम अवतार ही नजर आए दूसरों को। इस पर चिंतन होने लगे रोज सवेरे एक बार, एक बार दिन में और एक बार सोते। एक तो इस स्मृति को नेचुरल रूप दें आप यहां से जाकर, और इस नशे को साथ ले जाएं कि यहां हम आए तो बाबा हमें अवतार बनाकर ही भेज रहा है, छाप लगा दिए हम पे, आए थे मनुष्य रूप में और लौटे हैं अवतार रूप में। तो ऐसा नशा दूसरों को भी यही अनुभव कराता रहेगा। और दूसरी चीज जो मुझे कहनी है, जो बहुत काम आती है जीवन में, कि अपने जीवन के कुछ सिद्धांत होने चाहिए, कुछ अपने स्वयं नियम बनाओ। जैसे बाबा की मुरली में कल आया था एक शब्द संयम, सिद्धांत। एक है हमारे नियम जो हमने अपने जीवन में अपनाए हुए हैं, और दूसरे हमारे सिद्धांत। अपने सिद्धांत स्वयं बनाएं। उदाहरण के लिए मैं उदाहरण देता हूं आपको, आप उसमें से कोई भी एक दो तीन चुन सकते हैं। जैसे आप नियम बना ले, सिद्धांत बना ले अपने जीवन का कि हम अपने मुख से किसी को कड़वा नहीं बोलेंगे, ये हमारे जीवन का सिद्धांत हुआ। हमने सुन लिया है बाबा की मुरली में कि मुख से पत्थर न निकालो, फूल निकालो, हम सुन लेते हैं, लेकिन जब तक हमने उसको अपना सिद्धांत नहीं बनाया वो हमारे जीवन में नेचुरल रूप नहीं लाएगा। ऐसे दूसरा सिद्धांत कि हम इस संसार की किसी भी प्राप्ति की इच्छा नहीं रखेंगे, भगवान मिला बस, ये भी एक सिद्धांत बना ले। तो ये इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति दूसरों को भी अनुभव कराएगी कि ये आत्मा भरपूर हैं। तीसरा सिद्धांत कि हम कभी भी अपने मुख से अपने घर में रहते हुए, क्योंकि हमारा घर मंदिर है, किसी की निंदा नहीं करेंगे, ये भी एक सिद्धांत हो सकता है। कोई और भी आके सुनाए दूसरी बात तो आप कह सकते हैं कि हमने नियम बना लिया है न निंदा करेंगे न सुनेंगे। एक बार कहने से आपके पास कहने वाले कम होने लगेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही अब आप समझ ही गए होंगे, जीवन के सिद्धांत बनाओ, कम से कम एक नहीं तो तीन, और उन सिद्धांतों पे अपने को पूरी तरह से अटल अडोल रखने की प्रतिज्ञा स्वयं से करके जाओ, तो वो सिद्धांत हमारे लिए बल बन जाएंगे। सिद्धांत सबसे बड़ा बल है। जैसे कई माताओं में से आप में से कई माताओं ने एक नियम रखा होगा कि हमारे पति चाहे कुछ भी कहें हम चुप रहेंगे, रखा ना कई और नियम, तब चलते रहे हैं। ये एक नियम था, ये सिद्धांत था। इस सिद्धांत ने दूसरों को झुका दिया, वो उन्होंने आपकी सहन शक्ति को स्वीकार कर लिया, महानताओं को मान लिया। ऐसे ही जीवन के सिद्धांत होने चाहिए। सिद्धांत शक्ति देते हैं, योग से तो शक्ति आती है, लेकिन सिद्धांत भी मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा बल देते हैं। तो बस इस तरह मैं आपको ये तीन बातों पे ध्यान खिंचाया, फिर से रिपीट कर लें। एक चीज अवतार, दूसरी चीज अपने सिद्धांत बनाओ, और तीसरी चीज मैंने बताई, सदा ये याद रखो मेरे साथ हजार भुजाओं सहित बाबा हाजिर है। केवल बाबा है इतना नहीं, हजार भुजाओं सहित उपस्थित है। इससे निर्भय भी रहेंगे और काम काज हंसते खेलते करते रहेंगे, कोई थकान जैसी नहीं होगी, चिड़चिड़ापन अनुभव नहीं होगा। तो इन तीन चीजों को अपने साथ ले जाएंगे और जगत माता पर चिंतन करेंगे। ओम शांति।